मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इसराइल यात्रा से रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित और दोनों देशों के बीच संबंध होंगे प्रगाढ़। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 8 की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के उल्लेख का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यदि कोई पूर्वोत्तर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उनके खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के निगलोक इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में फेरोसिलिकॉन प्लांट के खिलाफ मोरलुंग और रालुंग गांव की माताओं की भूख हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 9 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने का जारी किया येलो अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश की महिला एवं पुरुष फुटबॉल टीम ने पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 के फाइनल राउंड के लिए कर लिया है क्वालिफाई। और कोलंबो में आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 8 में आज शाम न्यूजीलैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने पाकिस्तान को कल ग्रुप 2 के सुपर 8 मुकाबले में 2 विकेट से हराया था। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की राजकीय यात्रा पर इसराइल रवाना हुए। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि इसराइल की उनकी 2 दिन की राजकीय यात्रा से दोनों देशों के बीच स्थायी संबंध और प्रगाढ़ होंगे। श्री मोदी ने कहा कि यात्रा रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेगी और दोनों देशों के लिए एक लचीले नवोन्मेषी और समृद्ध भविष्य की साझा दृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल यात्रा के दौरान इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार, रक्षा तथा सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था, दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर बातचीत होगी। पारस्परिक हित के क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श की संभावना है। श्री मोदी कल इसराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग से मुलाकात भी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 8 की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के उल्लेख का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने इस मामले को संज्ञान लिया है। एक रिपोर्ट।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय के समक्ष कहा कि कक्षा 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है। न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि ये विषय वस्तु संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध प्रतीत होती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बार एसोसिएशन और पीठ दोनों ही इससे चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इस मुद्दे से विचलित हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि वो किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देगी। कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अनुसार भ्रष्टाचार, लंबित मामलों का भारी बोझ और न्यायाधीशों की कमी न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली कई चुनौतियों में से एक है। समाचार कक्ष से मैं सिर्फ।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में पहचान सत्यापन के लिए 10वीं कक्षा का प्रवेश पत्र उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ पूरक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने ये आदेश पारित किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं का नई दिल्ली स्थित मालवीय नगर में कथित तौर पर अपमान करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि उन पर कानून के अनुसार कई कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यदि कोई भी पूर्वोत्तर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
दिल्ली में 3 अरुणाचल लड़की के साथ मालविया नगर में जो घटना हुई है, तीनों अरुणाचल लड़की के साथ में मेरा खुद ऑफिस का स्टाफ टच में है और पहले दिन से हम दिल्ली पुलिस के टच में है। अभी नॉर्थ ईस्ट का कोई भी आदमी किसी के साथ दिल्ली में कुछ भी घटना होता है तो तुरंत एक्शन लेता है। पुलिस कार्रवाई किया, मैं खुद बात करके मैं फॉलोअप कर रहा हूं और अरेस्ट भी हो गया।
ईस्ट सियांग जिले के निगलोंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में फेरो सिलिकॉन प्लांट के खिलाफ मोरलुंग और रालुंग गांव की माताओं की भूख हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी रालुंग गांव के सामुदायिक भवन में हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांग है कि फेरो सिलिकॉन फैक्ट्री को उनके इलाके से स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी अधिकारी उनकी मांग पूरी करने का लिखित भरोसा नहीं देते, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। गांव वालों ने आरोप लगाया है कि सिलिकॉन फैक्ट्री से बने प्रदूषण माहौल के कारण इलाके में चाय के पौधों, अरेका नट्स और दूसरे फलों के पौधे सूख रहे हैं। इससे पहले गत 16 फरवरी 2026 को प्रदर्शनकारियों ने गोंडलुंग ब्रिज पॉइंट पर स्थित मिरम मिकोंग जोनाई रोड को ब्लॉक करते हुए सिलिकॉन फैक्ट्री में सामान ले जा रहे वाहनों को रोका था। अरुणाचल प्रदेश की महिला एवं पुरुष फुटबॉल टीम ने पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गत 20 फरवरी को शुरू हुए फुटबॉल चैंपियनशिप में पूर्वोत्तर की 7 टीमों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप का आयोजन अरुणाचल प्रदेश द्वारा पुरुषों के लिए यूपीआर स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम और महिलाओं के लिए नाहरलगन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में किया गया। अब दोनों ही टीमें फाइनल राउंड खेलेंगे, जिसका आयोजन झारखंड में किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग क्षेत्र में डेटा विश्लेषण के बेहतर बनाने और धोखाधड़ी की जोखिमों को पूर्वानुमान लगाने के ग्राहकों की सहभागिता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। नई दिल्ली में संपन्न इंडिया एआई एक्सपो में ये पता चला है कि एआई कैसे बैंकिंग तंत्र को तेजी से बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में ब्लू मशीन्स एआई के मार्केटिंग प्रमुख अर्पण खोसला ने बताया कि कंपनी एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्राइज ग्रेट वॉइस एआई ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है।
हम एंटरप्राइज वॉइस एआई ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। हम वॉइस एआई एजेंट बनाते हैं और उन्हें देश तथा विश्व की बड़ी कंपनियों में तैनात करते हैं। हम बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, विमानन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग की कई प्रमुख संस्थाओं के साथ काम करते हैं और वैश्विक स्तर पर भी सेवाएं देते हैं।
श्री खोसला ने शिखर सम्मेलन को भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया।
आई थिंक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इज दिस हिस्टोरिक मोमेंट। आई फील
मुझे लगता है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर रहा। जैसा कि आप जानते हैं, इसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मेरा मानना है कि यह एक निर्णायक क्षण है, जब दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि हम मात्र एआई के उपभोक्ता ही नहीं है बल्कि इसे विकसित भी कर सकते हैं। यह एक शानदार उदाहरण है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा है कि सरकार उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार नकली कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगा रही है और किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द किसान पहचान पत्र जारी करेंगी। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे, क्रादादी, लोअर सुबनसिरी, पापुमपारे, अपर सियांग, दिवांग वैली, अंजाव, तिरप और लोंगडिंग जिले के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज ग्रुप 2 के सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड और श्रीलंका आमने सामने होंगे। यह मैच शाम 7 बजे से कोलंबो में खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड ने पाकिस्तान को कल हुए ग्रुप 2 के सुपर 8 मुकाबले में 2 विकेट से हराया था। भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने और हथियारों की होर को रोकने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने ये बात कही। उन्होंने सैन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग और रक्षा क्षेत्र में विश्वसनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय ढांचे के प्रति देश की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
भारत की परमाणु नीति को दोहराते हुए विदेश सचिव ने कहा कि एक जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्षमता बनाए रखना हमारी प्रतिबद्धता है। श्री मिश्री ने कहा कि भारत सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जोखिमों को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में मानवीय निर्णय और निगरानी आवश्यक है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत ने विश्वसनीयता, सुरक्षा और पारदर्शिता के आधार पर रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा विकसित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परमाणु हथियारों से संबंधित निर्णय मानवीय नियंत्रण में ही रहेंगे। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।